अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद परम हर्ष उल्लास आनंद के ये क्षण आनंद का विषय परम पावन दिव्य भूमि महापुरुषों के पुरुषार्थ का जो परिणाम है सुंदर ज्ञान यज्ञ की ये भूमि हमको प्राप्त हुई प्रातःकाल अमृत बेला में ऋषियों महर्षियों की श्रुति स्मृतियों का श्रवण चिंतन जो हमारा ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है परम पुण्य के कारण बारंबार महापुरुषों का और भगवान का धन्यवाद है कि हमारे ऊपर इस प्रकार की कृपा हुई। वर्तमान में हमारा जो विषय है श्रीमद् भगवद गीता भगवान की निश्रुत वाणी के 16वें अध्याय दैवी संपदा और आसुरी संपदा जिसको हम लोग जानते हैं। दैवी संपदा यानी भगवत प्राप्ति के निमित्त जिन्होंने यत्न प्रारंभ किया है उनके अंदर ये संपदा होना आवश्यक है। जिस प्रकार से बाजार में सामान खरीदने के लिए आपके पास अर्थ की व्यवस्था जरूरी है और जो आसुरी संपदा है वो हमको वास्तविकता में स्वाभाविक प्राप्त है, उसके लिए किसी प्रकार का प्रयत्न प्रयास नहीं करना पड़ता। तो हमारा जो दूसरा श्लोक अध्याय का चल रहा था, अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वलो लुप्तम मार्दवम हृह चापलम। अहिंसा के बारे में हम लोगों ने जो है विचार किया, चिंतन किया, सत्यम सत्य के बारे में विचार किया और उसके उपरांत आता है अक्रोध की अवस्था। यानी जो साधारण रीत से अगर संसार की भाषा में बात करें, अगर सांसारिक रूप से आप अक्रोध और क्रोध के बारे में भगवान ने पूरी गीता में जगह जगह पर जो है दो चीजों को विशेष रूप से और तीसरे को भी जोड़ा है भगवान ने, एक है काम और दूसरा है क्रोध और तीसरा है लोभ। काम क्रोध और लोभ ये तीन भाई हैं जिन्होंने पूरे विश्व के ऊपर अखाड़ा जमा रखा और लगभग जो है जिसको कहना चाहिए 99% जनता, 1% बची होगी शायद इन तीनों की लगाम से, अन्यथा पूरे विश्व को इन्हीं तीनों ने क्या कर रखा है, अपने कब्जे में ले रखा है महाराज। तो इसलिए क्रोध और अक्रोध है ना, तो अगर सांसारिक रूप से प्राकृतिक रूप से जो है अगर आप देखें तो क्रोध को हमारे यहां शास्त्र की भाषा में अग्नि माना गया। क्या माना गया? हाँ, क्रोधाग्नि है ना, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, ये जब जागृत हो जाती हैं तो मनुष्य अपना आपा खो बैठता है। जिस प्रकार से अगर आप प्रकृति में निर्णय करके देखें तो आपको दिखाई देगा बिल्कुल स्पष्ट, प्राकृतिक अगर उदाहरण प्रमाण लेना चाहें तो हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, तो वहां दिखाई देगा महाराज प्रकृति में अगर सर्दी के मौसम में सामान जल्दी खराब होता है या गर्मी के मौसम में, क्यों भाई? जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी जल्दी खाने पीने का सामान खराब हो जाएगा, आपके कपड़े उतनी ही जल्दी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो सीधा सा प्राकृतिक यदि आप उदाहरण देखें तो महाराज गर्मी जो है हमेशा हानिकारक ही है। तो क्रोधाग्नि क्या करती है? हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती है ना। तो भगवान के द्वारा जो है दूसरे अध्याय में भी इसका क्या किया गया, वर्णन किया गया कि नहीं किया गया? तो दूसरे अध्याय से भगवान ने शुरू किया, उसके बाद फिर तीसरे अध्याय में जिस 16 अध्याय का हम लोग जो है चिंतन कर रहे हैं, फिर इस अध्याय में फिर भगवान ने जो है उस चीज को समझाया है। तो दूसरे अध्याय में जो है ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सूपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवत सम्मोहा सम्मोहात स्मृति ब्रह्म विभ्रमा स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा सारी कहानी हो गई कि नहीं हो गई? कुछ रह गया बाकी है? सबसे पहले क्या होता? सबसे पहले ध्यायतो विषयान पुंसा। ये क्रोध कहां से प्रारंभ होता? क्रोध से बचना बड़ा कठिन है, लेकिन बच सकता है अगर आप अपने आप को आत्मज्ञान का साधक मानते हैं। आत्मज्ञान का साधक मतलब क्या है? क्यों भाई, आत्मज्ञान का साधक मतलब क्या है? हैं? देखो, है ना, आत्मज्ञान का साधक मतलब हम अपने आप को खोज रहे हैं, खुद को ही क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं, अपना घर ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? उसका कारण यही है, कोई दूसरा कारण नहीं है। और कहानी कहां से शुरू हुई? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सूप जायते। पहले हम विषयों का क्या करते हैं? चिंतन करना प्रारंभ करते हैं, और धीरे धीरे उस विषय के प्रति हमारा मन एकदम दृढ़ होने लगता। नहीं, ये चीज हमको प्राप्त ही करनी है, और ये निर्णय ले लेते हैं। हम उस समय ये भूल जाते हैं ये हमारे भले के लिए है कि विनाश के लिए है, कुछ भी हमको होश नहीं रहता। हमारा तो बस जिस चीज में आसक्ति हो गई, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सूप जाए, आसक्ति उत्पन्न होती उस चीज के प्रति। क्या उत्पन्न होती है? संग यानी आसक्ति का उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है, और ज्यों ज्यों उस वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति क्या हो जाती, बढ़ जाती है, फिर आप पूरा एड़ी से चोटी का क्या लगा देते हैं, उस चीज को प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं महाराज। हैं? तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सूप जाते, संगात संजायते कामा, कामाग्नि प्रदीप्त होती महाराज, है ना, भयंकर कामाग्नि उत्पन्न होती है कि नहीं मुझे इस चीज को क्या करना है। एन केन प्रकारेण, उसमें फिर तरह तरह की मानसिक अवस्थाएं हैं, कोई हार जाता है और कोई नहीं हारता है महाराज। आखिरी तक उस वस्तु पदार्थ को पाने के लिए वो क्या करता रहता है ना, युद्ध करता रहता है महाराज आखिरी तक उसको। हमने तो एक बड़ी कभी कभी हास्यास्पद स्थितियां देखने को मिलती है ना, तो एक जो है स्टूडेंट लाइफ में दो लोगों के मध्य में प्यार हुआ महाराज, और दोनों की अलग अलग जगह शादी हो गई। और अभी कुछ वर्ष पहले जो है हमारे ये उल्लासनगर के हमारे एक प्रेमी थे, उन्हीं के संग घटी हुई घटना है, सत्य घटना बता रहे हैं। तो अंत में हुआ क्या कि 85 से 87 वर्ष की आयु के मध्य में दोनों के लाइफ पार्टनर जो है मर गए। तो आखिरी में उन्होंने, दोनों ने देखो कब की इच्छा, और 87 साल की आयु में दोनों ने क्या किया, विवाह किया। ये है संगात संजायते कामा, कामात क्रोध हो विजय, कामना है हम एक दूसरे से विवाह करें, और वो कामना वहां पर समाप्त नहीं हुई, खाली दबा दी गई संसार के द्वारा, लेकिन आखिरी में मौका मिलते ही उस कामना को उन्होंने क्या किया, पूर्ण किया। तो इस प्रकार से मनुष्य इस जगत के पदार्थों की तरफ पागलों की तरह क्या करता है, भागता है। वास्तविकता में देखा जाए तो हम ईश्वर की ओर नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की ओर भागने में आप, ईश्वर के पास कुछ है ही नहीं, ईश्वर के पास कुछ भी नहीं है, ईश्वर तो ईश्वर ही है, वहां तो केवल परमानंद अवस्था है, वहां कोई जगत के पदार्थ तो है नहीं कि आपको भगवान के पास कुछ मिलेगा खाने पीने का माल, है ना, वहां कुछ खाना पीना पहनना ओढ़ना, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो ममा। ऐसा भगवान का जो सुंदर धाम है, वहां ना सूर्य है ना चंद्रमा की गति नहीं मारा, तो खाना पीना पहनना ओढ़ना तो बात छोड़ दो, तो वहां तो कुछ है नहीं, वहां तो कोई कामना सवाल ही नहीं उठता महाराज। तो कामनाएं सब कहां है, सीधी सी बात है, संसार में ही है कि नहीं है? तो भगवान की तरफ जब आप दौड़ेंगे तो आपके अंदर कोई कामना ही नहीं रह जाएगी, और जब आप संसार की ओर दौड़ेंगे तो वहां पर कामनाओं का ही साम्राज्य होगा, कामनाओं के अलावा आपको कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। संगात संजायते कामा, कामात क्रोध हो भी जायते। जब मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती है तब उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, और ये क्रोध की भट्टी जब दिमाग में बुद्धि में सुलग जाती है महाराज, है ना, जिस प्रकार से अग्नि हर चीज का भक्षण कर जाती है, उसी प्रकार से क्रोधाग्नि हमारी संपूर्ण बुद्धि का नाश कर देती। जैसे एक चिंगारी प्रलय जब बन जाती है तो बड़ी बड़ी महाराज मिलें और फैक्ट्रियां जो है राख का क्या बन जाती हैं, ढेर बन जाती है महाराज। एक साधारण सा स्पार्क जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं, एक साधारण सा स्पार्क इतने बड़े करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को राख बनाने के लिए क्या हो जाता है, पर्याप्त तो हो जाता है। यानी क्रोध जो है हमारी बहुत सारी साधना को क्या कर देता है, दुनिया भर की आप साधनाएं करो है ना, तो उसका परिणाम क्या होगा कि पूर्ण साधनाएं महाराज क्रोधाग्नि जो है जल करके राख कर देगी। इसलिए भगवान ने दैवी संपदा का ये गुण बताया क्रोध। और केवल दैवी संपदा में ही नहीं, भगवान ने तो पहले दूसरे अध्याय से ही पूरी कहानी हमारी जीवन शैली समझा दी भगवान ने अर्जुन को कि ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुब जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते। क्रोध को उत्पन्न करता है और जब ये क्रोध की भट्टी सुलग जाती है महाराज, अपने यौवन में आ जाती है, तब ये क्या करती है, क्रोधात भवत सम्मोहा। क्रोध से क्या होता है, सम्मोह। सम्मोह का मतलब समझते हैं, है? सम्मोह का मतलब, सम्मोह का मतलब दिग्भ्रमित हो जाना। चीज कुछ है और दिखाई कुछ दे रही, इसके लिए हमारे संत लोग बहुत सुंदर साधारण की, तो हमारे यहां शास्त्रों में तो महाराज सबको उदाहरण बना दिया गया, भगवान भोलेनाथ को उदाहरण बना दिया गया, विश्वामित्र जी जैसे तपस्वी को उदाहरण बना दिया गया, सब जितने भी बड़े बड़े महापुरुष सबको उदाहरण बना दिया गया महाराज। किसके लिए, हमको आपको समझाने के लिए। तो हनुमान जी को महाराज उदाहरण बना दिया हमारे संतों ने, किस प्रकार से, बोले जो है हनुमान जी है कथा सुना करते थे, राम की कथा जहां होती वहां पर वो कथा सुनते हैं, समर्थ गुरु रामदास कथा कर रहे थे, हनुमान जी बूढ़े के रूप में बैठकर कथा सुन रहे थे, अशोक वाटिका का वर्णन प्रारंभ हुआ और गुरु स्वामी जी ने महाराज ने कहा कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका गए तो वहां पर श्वेत पुष्पों की माला खिली हुई, चारों तरफ सफेद पुष्प थे। तो जैसे ही उन्होंने कहा, हनुमान जी ने बूढ़े के वेश में ही बोला कि महाराज वहां सफेद नहीं लाल फूल थे। बोले चुपचाप बैठ जाओ कथा सुनो। नहीं नहीं वहां पर लाल फूल थे। तो फिर से उन्होंने कथा प्रारंभ की, बोले हनुमान जी जब अशोक वाटिका में प्रविष्ट हुए तो चारों तरफ श्वेत पुष्पों की श्रृंखला खिली हुई थी। तो गुस्सा आ गया महाराज, खड़े हो गए हनुमान जी बूढ़े वेश में ही खड़े हो गए। बोले महाराज वहां सफेद नहीं लाल फूल थे। बोले नहीं सफेद फूल, क्योंकि वो समाधि में स्थित होकर महाराज दर्शन करते थे उस कथा का और प्रातःकाल फिर सुनाते थे। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं बूढ़ा नहीं हूं, मुझे जानते हो मैं कौन हूं। बोले कौन हो, हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए। बोले अब समझ में आया, अशोक वाटिका में आप नहीं मैं गया था, वहां पर फूल कैसे थे, लाल थे। तो फिर महाराज उन्होंने कहा तुम बैठ जाओ हनुमान, ये है महापुरुष, हनुमान जी तुम बैठ जाओ। जब हनुमान अशोक वाटिका में प्रवेश हुए तो वहां श्वेत पुष्पों की माला खिली हुई। तो बोले हैं तो मैं साक्षात हनुमान आपके सामने प्रमाण हूं, अभी भी आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। तो फिर उन्होंने समझाया कि हनुमान जिस समय तुम लंका में प्रविष्ट हुए अशोक वाटिका में, उस समय वहां पुष्प तो श्वेत ही थे, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी भयंकर क्रोधाग्नि जल रही थी कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल क्या हो चुकी थी, लाल हो गई थी। और उस समय तुमको फूल तो क्या, पूरी की पूरी लंका भी क्या दिखाई दे रही थी, लाल दिखाई दे रही थी। ये कौन करता, क्रोध ने महाराज देखो हनुमान जी को भी सत्य से असत्य में खड़ा कर दिया। फूल वहां सफेद थे लेकिन दिखाई कैसे दे रहे थे, हाँ इसको कहते हैं क्रोधात भवत सम्मोहा। हमारे जीवन में ये फूल कैसे लाल सफेद होते हैं, क्यों भाई, क्रोध क्या करता है, क्रोध मित्र को शत्रु बना देता है और शत्रु को मित्र बना देता है। जो हमारा हितैषी है, अरे छोटे छोटे घर के बालक आपको उनको किसकी बात समझ में आती है, अपने दोस्तों की अपने मित्रों की। और जब आप उनके मित्रों की कही हुई बात की इच्छा पूरी नहीं करते तो उस बच्चे के अंदर क्या जागृत होता है, क्रोध, और जब उसके अंदर क्रोध जागृत होता है तो वो भटकाने वाला जो उसका साथी होता है वो मित्र दिखाई देता है और माता पिता उसको शत्रु दिखाई देते हैं। ये किसने किया? क्रोध ने किया महाराज। और कभी कभी तो ऐसे भयंकर कदम उठा लेते हैं वो छोटे बच्चे जिसका फिर लौटना संभव नहीं होता है महाराज। ये किसने कराया? क्रोध ने कराया। क्रोधात भवत सम्मोहा, जैसे हनुमान जी को महाराज गुस्सा आने पर श्वेत पुष्प भी कैसे दिखाई देने लगे, लाल दिखाई देने लगे, इसी प्रकार से हम भी सम्मोहित हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, अपने हितैषी को जो है अपना शत्रु मान बैठते हैं और अपने शत्रु को अपना हितैषी मान बैठते हैं। और जब सब कुछ लुट जाता है तब फिर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। गीता सुनने के बाद अर्जुन को क्या क्या मिला? मकान मिला, क्यों भाई हैं? फ्लैट मिला बालकेश्वर में नहीं क्यों भाई बताओ क्या मिला अर्जुन को? सारी 700 श्लोक की गीता पूरी तो भगवान की वाणी नहीं है, अन्य भी वाणियां हैं, लेकिन जो भगवान ने ज्ञान उपदेश किया अंत में अर्जुन को गीता सुनने के बाद क्या गिफ्ट मिली हैं? अरे नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा हुआ कि नहीं हुआ? मोह नष्ट हो गया और जो है सम्मोह, मोह और सम्मोह एक ही चीज है कि नहीं है? अरे भाई जो सत्य स्वरूप परमेश्वर है उससे हमको प्रेम नहीं है, और जो परम असत्य संसार क्षणिक संसार है उससे हमको जरूरत से ज्यादा लगाव है। चाहे हमको कोई माने या ना माने लेकिन हम उससे लगाव लगाकर बैठे हुए हैं, तो इसको कहते हैं सम्मोह। अर्जुन कहता नष्टो मोहा, और क्या हुआ? स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई वापस। क्या स्मृति आ गई? अरे भाई हम यहां बैठ के क्या कर रहे हैं? अपने घर का पता ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हो? क्यों भाई? अरे प्रेमपुरी में सुबह सुबह किस लिए आते हो? अपना पता ढूंढने कि मेरा घर कहां है? स्मृति क्या हो गई? स्मृति भ्रंसात, क्या हुआ? स्मृति नष्ट हो गई है हमारी। हम अपने स्वरूप को उस क्रोधाग्नि के द्वारा नष्ट हो जाने के बाद सम्मोहित हो जाने के कारण हम अपने घर को ही नहीं देख पा रहे हैं, अपने विशाल अखंड स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, अपना परमानंद स्वरूप हमको दर्शन नहीं हो रहा है। हम तो केवल महाराज अपनी बुद्धि को मिटा करके सुख दुख रूपी घर को ही अपना घर मान बैठे हैं। ये हमारी स्मृति का विभ्रम है। स्मृति भ्रंसाद बुद्धि नाशो, क्योंकि जब आपकी स्मृति चली गई हम कौन हैं और अपने आप को क्या समझ रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाने के लिए एक छोटी सी टॉफी के लालच में आ जाता है, माता पिता कहते हैं बेटा एक टॉफी स्कूल जाने से पहले मिलेगी और एक टॉफी स्कूल से आने वापस आने के बाद मिलेगी, और वो दो टॉफियों के लालच में बेचारा 5 घंटे के स्कूल की पढ़ाई को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। यही स्थिति हमारी है कि नहीं है? देखो ये टॉफियों का लालच मिला हुआ है महाराज। ये संसार के पदार्थ हैं, जिन पदार्थों के पीछे हम पागलों के तरह भाग रहे हैं वो पदार्थ सारे के सारे पापी से पापी व्यक्ति को भी सहज हैं और उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि पुण्य आत्माओं को ही मिलेंगे ये पदार्थ, पापी से पापी व्यक्ति को भी ये सुख भोग क्या हैं? उपलब्ध हैं महाराज, और बड़े सहज उपलब्ध हैं। जो आपके पास नहीं है वो जघन्य पापियों के पास है महाराज। जाके देखो आपके बंबई में है ना एक चोर बाजार, क्या नाम है अपनी ही चप्पल खरीदने के लिए आदमी चोर बाजार में जाता, अपनी गाड़ी की हेडलाइट खरीदने कहां जाता है? चोर बाजार जाता है। बोलो तो जो आपके पास नहीं है वो किनके पास है? जिन उपलब्धियों में हम अपने आप को बहुत बड़ा अनुभव कर रहे हैं, वास्तविकता में तो भगवान ने इसीलिए तो ये दाने डाले हमको दिखाने के लिए, सहज उपलब्ध हैं। तो फिर हमारा पता क्या है? बुद्धि ही नष्ट हो गई। हम संसार के अलावा इस बाउंड्री वॉल के बाहर जाना ही नहीं चाहते और ना इसके बाहर निकल के हम सोचना विचार करना चाहते। ये किसने कराया? ये सारा किया धरा क्रोधाग्नि का काम है महाराज। इस क्रोधाग्नि ने हमारी बुद्धि को जला जला के राख कर दिया। जिस वस्तु की प्राप्ति हमको नहीं हुई, अंदर ही अंदर हम उस अग्नि के संग जलते रहे। पढ़ो, अपने जीवन को पढ़ो महाराज, ये श्रीमद भगवद गीता है। अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई, मैं समझ गया मैं कौन हूं। मैं ये शरीरधारी अर्जुन नहीं हूं, मैं ये युद्ध लड़ने वाला अर्जुन नहीं, मैं तो अनंत सृष्टि का मालिक हूं। मेरा कोई आदि अंत नहीं है, मैं आदि अंत से रहित परम अखंड स्वरूप, अमृत स्वरूप, परमानंद स्वरूप, मेरे अंदर कोई कमी नहीं, मैं परिपूर्ण हूं, मुझे कुछ भी तो नहीं चाहिए। कहां भटक रहा था मैं? स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो। एक तरफ स्थिति ये है और दूसरी तरफ है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात। हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मुझे ये अनुभव होने लगा। भगवान कहते हैं अक्रोध है ना, नंबर एक जो है बुद्धि नाशा प्रणश्यति, यानी हमारी बुद्धि नष्ट हो गई, हमारी स्मृति चली गई, तो समझ जाओ हम जीते जी क्या हो गए, मृत हो गए। वास्तविकता में यही मृत्यु है, जब हमारी बुद्धि ही काम करना क्या कर देती, बंद कर देती है। इसलिए है, और जबकि होना क्या है, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से एन के एन प्रकार, सुखदेव जी ने तो पूरी छूट दे दी, बोले चाहे जैसे जियो, तुम्हारी मर्जी, जैसे जियो, जैसा अच्छा लगे वैसे तुम अपने जीवन को बना लो, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं राजा परीक्षित, अंते नारायण स्मृति, अंत में परमेश्वर का चिंतन अवश्य होना चाहिए, यही केवल मनुष्य जीवन का लाभ है और कोई दूसरा लाभ नहीं है। तो देखा जाता है महाराज कि अंतिम काल में बहुत कम, बहुत कम, कोई लाखों करोड़ों में एक आध ऐसे महापुरुष दिखाई देते हैं जो अंत में पूर्णतया सजग अवस्था में, कितनी भी बीमारियां उनके शरीर में लगी हों, लेकिन वो भगवान का क्या करते हैं, परमेश्वर का स्मरण करते हुए अपने इस नश्वर पांच भौतिक शरीर का परित्याग करते हैं। अन्यथा तो महाराज हाय हाय करता हुआ आदमी कैसे जाता है, हाय बचाओ, हाय मेरी रक्षा करो, हाय यहां दर्द, हाय क्या होगा। इन सारी वृत्तियों से भरे होने के कारण अंत में उसको परमेश्वर की याद ही नहीं आती, बुद्धि नाशा प्रणश्यति, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। किसके कारण? क्योंकि हम रात दिन विषयों का ही क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जो है एक बड़ी सुंदर आपको जो है उदाहरणार्थ बताते हैं कि हमारे एक प्रेमी थे महाराज, और उनका जो है मसाले का व्यापार था, तो भर्ती हुए हॉस्पिटल में महाराज, भर्ती हुए मरणासन्न अवस्था में हॉस्पिटल ले जाए गए, वृद्ध शरीर, और उनका जो है मसाले का व्यापार महाराज, जब सारे बाजार के व्यापारी उनसे मिलने पहुंचे कि देखें भाई क्या हाल है, तो जब मसाले के व्यापारी उनसे मिलने गए तो उन्होंने कोई दूसरी चर्चा नहीं की, उनके अंदर घुसते ही सबसे पहले ये पूछा मिर्च का भाव क्या चल रहा। ये हमारी बुद्धि की अवस्था है, ये बुद्धि कब क्या विचार कर रही होगी कुछ भी पता। हाँ देखो, चारों तरफ नलियां लगी हुई हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लेके तैयार खड़ा है और घर वालों से बता रहा है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, बच गया तो बच गया। ऐसी अवस्था में भी भगवान ध्यान नहीं आ रहा है, कौन ध्यान आ रहा है, जिस चीज का वो व्यापार करता है उसी में ही उसका दिमाग लगा हुआ है। तो अब बताओ महाराज, मृत्यु के बाद उसकी गति क्या हो, गया ना जड़ गति में। ये हम भूले हुए अपने पते को, ये हमारा जो भूला हुआ पता हम ढूंढ रहे हैं, अपना घर ढूंढ रहे हैं महाराज, अपना घर ही हमको नहीं मिल रहा। किसके कारण? क्रोध के कारण। इसलिए भगवान कहते हैं अक्रोध, और अक्रोध की सीमा जो मानी गई है, यानी क्रोध करने की सीमा भी अंतिम सीमा। भगवान भोलेनाथ के ऊपर इतना लोग जो है प्रहार करते हैं, लेकिन आखिरी में जाकर बहुत जब अति हो जाती है, दक्ष ने जब अति कर दी है ना, रात दिन दक्ष जानते हैं भगवान भोलेनाथ को किस नाम से पुकारते थे हैं? जब उनकी कन्या उनके घर आती थी माता भगवती सती, तो दक्ष उनसे कैसे बात करते थे? तो हम लोग तो धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, लेकिन अगर साधारण दृष्टि से आप विचार करके देखेंगे तो महाराज हां तो कैसे पूछते थे दक्ष, और भाई तुम्हारा भिखारी पति कैसा, ऐसा कौन बोलते थे? ये होता ना अभिमान। लेकिन भगवान भोलेनाथ भी जो है इन चीजों को एक कान से, जैसे आप सत्संग को एक कान से सुन के दूसरे कान से क्या कर देते, निकाल देते कि नहीं निकाल देते? ये तो रोज का काम है आपका, एक संसार का धंधा है, एक ये धंधा भी है। हाँ, एक कान से सुनते जाओ दूसरे कान से निकालते जाओ, और 30 तारीख को पूछना शुरू कर दोगे कल कौन आ रहा नया, जो गया जो गया। जैसे वो भेलपूरी खा के उसका कागज क्या कर देते हैं, ऐसे ही जो वक्ता गया सो फिर अगले साल आ गया तो ठीक, नहीं आया तो और बढ़िया, क्यों भाई? तो ऐसा नहीं, तो भोलेनाथ भी महाराज आपकी तरह पक्के थे, वो भी दक्ष प्रजापति के इस प्रकार की बातों का उनके ऊपर कोई प्रभाव, आपको कोई भिखारी कह दे महाराज क्यों भाई, शकल देखना पसंद करोगे उसकी? लेकिन भगवान भोलेनाथ उसको अंत सुना, यही महापुरुष, ये दैवी संपदा के धारण करने वाले लोगों की स्थिति दिखाई गई है ना। अक्रोध, इतनी दुर्वचन बोलने पर भी, अपमान के भयंकर शब्दों का इस्तेमाल करने पर भी ना बुलाने, कभी नहीं बुलाया दक्ष प्रजापति, कभी भगवान भोलेनाथ को निमंत्रित ही नहीं करते थे अपने, बोले भिखारी है। क्यों? ये हमारी बुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ वो पर्दा है महाराज, जिसको भगवान का दर्शन साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित दक्ष प्रजापति महाराज अपने ही जमाई भगवान भोलेनाथ को भगवान स्वरूप समझने में भ्रमित हैं, तो बाकी की तो दशा क्या होगी जरा सोचो। अपने ही जो भगवत स्वरूप प्रभु प्राप्त हुए उनको वो अपना जमाई समझ के, और जमाइयों में भी इतने सारे उनके जमाई थे महाराज, 60 कन्याएं थीं हैं, इतने सारे दामाद, कश्यप ऋषि थे, चंद्रमा हैं 27 कन्याएं दी, नक्षत्र जो माने जाते हैं, तो इतना बड़ा जो उनका साम्राज्य था उसमें सबसे निकृष्ट वो किसको मानते थे? भगवान भोलेनाथ को। इस प्रकार से मनुष्य अपनी बुद्धि को अंधा कर बैठता है, किसकी चमक में? इस संसार की चमक में महाराज। दक्ष प्रजापति जब इस प्रकार से अंधे हो गए, जो प्रथम के प्रजापतियों में माने गए हैं, तो महाराज बाकियों की जो दशा क्या होगी, भगवान को कैसे हम पहचानेंगे? लेकिन भगवान की जो अवस्था यहां दर्शाई गई है, भगवान ने बिल्कुल भी क्रोध, एक इंच भी क्रोध नहीं किया, और क्रोध भी किया किसके लिए? अपने अपमान के लिए नहीं किया, किसके लिए किया? जब उनकी धर्म पत्नी का महाराज, क्योंकि पत्नी का भार किसके ऊपर होता है? पति के ऊपर होता है। तो जब उनकी पत्नी ने महाराज जो है योगाग्नि में अपने शरीर को उस यज्ञ कुंड के समक्ष छोड़ा, तब भगवान भोलेनाथ ने ये कदम उठाया महाराज, तब उन्होंने क्रोध किया, क्योंकि भयभीन भोय न प्रीति, भोलेनाथ ने इस नियम का वहां पालन किया महाराज, बिना भय के फिर प्रीति, जड़ बुद्धि के संग अगर आपको प्रीत करनी है तो वहां फिर भय आ जाता है। जब भोलेनाथ का महाराज एक बाल, क्या औकात थी महाराज जरा सोचो, उस दक्ष प्रजापति की, भगवान भोलेनाथ की जटा के एक बाल ने, जिससे वीरभद्र का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और उस एक वीरभद्र ने महाराज पूरा साम्राज्य उखाड़ के क्या कर दिया। ये तो स्थिति थी दक्ष प्रजापति की भोलेनाथ के सामने, और भोलेनाथ को दक्ष प्रजापति क्या कहता है, भिखारी, ऐसे तो भिखारी हैं भोलेनाथ हैं, तो जरा सोचो भगवान को। तो इसलिए भगवान को साक्षात प्रमाण मानते हुए, उदाहरण मानते हुए, दैवी संपदा के अधिकारी को यानी साधक को, भगवत प्राप्ति, निज स्वरूप की प्राप्ति, जिसको हम अपना पता कहते हैं, निस्वरूप हम अपने ही पते को बोले हुए, सब कुछ सामने है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ना। जैसे किसी ने बहुत दिनों बाद अपने पुराने घर में एक तिजोरी उसको मिल जाए, और उस तिजोरी को खोले, और तिजोरी में महाराज एक बड़ा बढ़िया नक्शा रखा हो खजाने का, और उसको वो खजाने का नक्शा समझ में नहीं आ रहा है। वही हाल हमारा है, हमारा ही खजाना हमारे घर में है लेकिन अपना ही खजाना हमको दिखाई, नक्शा तो सामने है कि नहीं है, इन श्रुतियों स्मृतियों के रूप में आपको नक्शा तो महाराज प्राप्त हो गया, इतना बड़ा नक्शा मिला हुआ है लेकिन फिर भी हमको खजाना मिल नहीं रहा। तो महाराज ये अक्रोध की अवस्था है, जरा इसको दूसरे रूप में भी समझ लेते हैं। चलिए तीसरे अध्याय की सैर करा दें आप, है ना। देखो भगवान ने बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया और आपके एक बहुत बड़ी शंका का समाधान किया कि अर्जुन ने दो जगह बड़े सुंदर प्रश्न किए। नंबर एक तो चंचलम ही मना कृष्णा, जिसको आप लोग जानते हैं कि चंचल मन की चंचलता जो किसी के हाथ में आती नहीं, तो चंचलम ही मना कृष्णा का प्रश्न किया भगवान अर्जुन ने कि महाराज इतने चंचल मन को कैसे रोका जाए, उसका उत्तर दिया। और उसके बाद एक बहुत सुंदर प्रश्न जो आपके नित्य प्रति का अनुभव, क्या प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वाष्णै वरादेव नियोजिता। बोले भगवान मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पुरुष जो है, मनुष्य जो है, बहुत से ऐसे कार्य हैं वो करना नहीं चाहता है, इच्छा नहीं है उसकी वो कार्य करने की, लेकिन अनिच्छन बिना इच्छा के भी बलात् कौन सी ऐसी वो शक्ति है जो उसको उसी कार्य में जो वो नहीं करना चाहता है तो भी उसमें लगा देती है। कौन है वो प्रेरणा, जिस प्रेरणा के कारण प्रयुक्ता पापम चरती, पाप करने के लिए ये मनुष्य मजबूर हो जाता है। अनिच्छन अपिवाषणे बलादिव नियोजिता, कहते पापम चरति पुरुषा, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है, हम झूठ नहीं बोलना चाहते, हम कोई भी ऐसा दुष्कर्म नहीं करना चाहते हैं जिसको शास्त्रों ने मना किया, लेकिन उसके बाद भी हम करते हैं और करने के बाद उसको ढकने की क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं। अर्जुन ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, भगवान ये क्यों होता है, हमारा मन पाप में जाता ही क्यों है, हम चाहते तो नहीं है लेकिन बार बार क्यों जाता है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्येन हमि वैरिणम। भगवान कहते हैं जब हमारे अंदर सात्विक गुण की हानि हो जाती, इसीलिए सात्विक गुण को बढ़ाना चाहिए, जब हमारे अंदर सात्विक गुण की हानि हो जाती है और रजोगुण धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, यानी संसार आपको आकर्षक लगने लगता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर के सात्विक गुण का जो रूप है वो कम हो जाता है, राजस तामस का स्वरूप क्या हो जाता है, तब आपके ऊपर है ना। जिस प्रकार से टंकी का जल होता है ना, टंकी में जल भरा है या कम करना है या ज्यादा करना है सब आपके हाथ में, इसी प्रकार से सात्विकता को बढ़ाओगे तो भगवान निकट आने लगेंगे, और अगर रजोगुण तमोगुण को बढ़ाओगे तो महाराज संसार निकट आने लगेगा। तो भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश, ये जो काम है यानी कामनाओं का जो हमारा संसार है और इससे उत्पन्न होने वाला जो क्रोध है, क्योंकि वास्तविकता में ये जो दोनों हैं ये साधारण नहीं है। भगवान ने एक बड़ी भयंकर उपाधि इनको दी है जिसको हम लोग कहते हैं पेटू, सांसारिक भाषा में क्या कहते हैं, पेटू होता है ना, जो जिसका पेट कभी भरता नहीं, चाहे गले तक उसको भोजन करा दो लेकिन उसके बाद भी उससे पूछो कुछ खाओगे तो कुछ ना कुछ नाम बता देगा। कहते हैं ठीक इसी प्रकार से ये कामाग्नि और क्रोधाग्नि जो हैं, इनको चाहे जितना खिला दो महासना, इनका पेट कभी भरता नहीं है भोगों से, चाहे जितने भोग इनको दे दो, अनंत भोग दे दो। कहते हैं यही वो असली पापी हैं जो हमको पाप करने के लिए क्या कर देते हैं, मजबूर करते हैं, महापापमा, ये वही काम है और यही क्रोध है जो भयंकर हमारे पीछे पड़कर हमको जो है पाप करने के लिए मजबूर कर देता है, और यही हमारा क्या है, वैरणम विद्धि, इसी को अपना शत्रु मानना चाहिए। बहुत सुंदर जो है उदाहरण दिया भगवान ने क्रोध का और काम का जो स्वरूप है, भगवान कहते हैं ठीक उसी प्रकार से देखो हम अपना पता क्यों भूल गए हैं और अपने आप को क्यों खोज रहे हैं। और यहां पर भगवान ने इतने सुंदर उदाहरण दिए हैं, धूमेनाब्रियते वन्यथा दर्शो मलेन चा यथोल्वेनाव्रतो गर्भ तथा तेनेदमाव्रतम्। कहते हैं भगवान जिस प्रकार से अग्नि इतनी प्रकाश युक्त होती है, कहीं पर जो है अग्नि लग जाए और वहां पर धुआं करने वाला सामान अगर ज्यादा हो, जैसे कभी कभी आपने हवन करते समय अनुभव किया होगा, जब अग्नि मंद पड़ जाती है तो उस अग्नि की छोटी सी शिखा के चारों तरफ इतना धुआं इकट्ठा हो जाता है, हैं? धूम जो है वन्नी कहते अग्नि को, अग्नि के चारों तरफ इतना धुआं इकट्ठा हो जाता है कि धुआं दिखाई देता है और वो अग्नि की जो लपट होती है वो क्या हो जाती है, अंतर ध्यान हो जाती है और धुआं ही धुआं दिखाई देता है। यद्यपि जो है तेज युक्त क्या है, अग्नि या धुआं, तेज युक्त है अग्नि, लेकिन उस तेज युक्त अग्नि के तेज को वो धुआं खा जाता है, अपना आवरण देकर उस अग्नि के स्वरूप को ढक लेता है। ठीक दूसरी तरफ महाराज मलेन आदर्शः, कहते हैं आदर्श कहते हैं दर्पण को, जिसमें हम लोग अपना क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं महाराज। तो कहते हैं जिस प्रकार से मैल यानी धूल जो है दर्पण के को ढक लेती है, अब्रियते ढक लेती है ना, दर्पण ढक जाता है किस चीज से, हाँ धूल से ढक जाता है, तो जिसमें हमको सब कुछ दिखाई देना चाहिए उसमें फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद तीसरा महाराज भगवान ने उदाहरण दिया हमारे अपने शरीर में घटित होने वाली घटना का, कहते हैं यथोल वेना व्रतो गर्भ, जिस प्रकार से गर्भ यानी जो छोटा बालक गर्भ में पलने वाला बालक है, प्रकृति उसकी रक्षा के लिए उसके ऊपर एक जो है पर्च बनाती है, जिसको हम लोग उल्वेन संस्कृत में उल्वेन और साधारण भाषा में जेर कहते हैं और इंग्लिश में आप उसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो जेर जो है उसका निर्माण हो जाता है और वो छोटा सा बच्चा उस गर्भ में क्या हो जाता है, उसके अंदर ढक जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे वो गर्भ में अगर साधारण रूप में देखा जाए तो अगर आजकल तो जो है अल्ट्रासाउंड मशीन है तो वो सीधे उसकी रेजेस पार हो जाती हैं, आर पार हो जाती हैं, तो इसलिए गर्भ सीधा दिखाई देता, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था ना हो, अगर साधारण दृष्टि की व्यवस्था हो तो महाराज उस जेर के अंदर बंद बालक को आप देख नहीं सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, कोई शिशु है अथवा कोई सामान है और इस पुत्र है पुत्री हो, तो बाद की बातें, पहले तो ये पता चले कि इसके अंदर है क्या। तो एक साधारण सी पतली सी परत इतने बड़े बच्चे को क्या कर लेती है, ढक लेती है। यथा उल्वेन गर्भः आवृतः, जिस प्रकार से एक साधारण सी परत से जेर की परत से इतना बड़ा गर्भ ढक जाता है, इसी प्रकार से काम रूपी जो छोटी सी परत है इसके अंदर दम नहीं है, लेकिन ये काम और उससे उत्पन्न हुआ क्रोध ये दोनों मिलकर महाराज क्या करते हैं, ये पूरे गर्भ को यानी हमको आपको ढके हुए हैं, हमको सब कुछ गर्भ के अंदर यानी जेर के अंदर का सारा संसार हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस परत के बाहर की दुनिया हमको दिखाई नहीं दे रही है ना, जिसको कहते हैं संसार। इस काम रूपी जो धूल ने या काम रूपी धुएं ने जो हमको ढक लिया है, इसलिए हमको मुख्य अग्नि का दर्शन नहीं हो रहा, ऐसा भयंकर हमारा अंतःकरण काम क्रोध के धुएं से भरा हुआ है, जेर से ढका हुआ है, दर्पण के ऊपर पड़ी हुई धूल की तरह हमारा अंतःकरण दूषित हो चुका है और परिणामतया हमको अपने स्वरूप का मुख्य रूप का दर्शन। तो तेज कहाँ है, तेज अग्नि में है या धुएं में है? तेज है हमारे अपने स्वरूप में और हमको दिखाई दे रहा है तेज कहां पर? संसार में। चमक कहीं और है और दिखाई कहीं और दे रही है। फिर भगवान ने इसको समझाया आगे, देखो बहुत सुंदर श्लोक है ये। आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। कहते हैं ये ऐसी, ये कामाग्नि और क्रोधाग्नि जो है ऐसी भयंकर अग्नियां हैं कि इनका कभी पेट भरता, दुष्पूरेण इनका कभी पेट नहीं भरता है महाराज। इसलिए ज्ञानी महापुरुषों ने इनको अपना नित्य बैरी मान लिया। बहुत ध्यान देने वाले शब्द हैं यहां पर। शंकराचार्य जी कहते हैं कि काम और क्रोध ज्ञानियों के शत्रु हैं। हाँ, बहुत समझने वाली चीज है। ज्ञानियों के नित्य बैरी हैं, संसारियों के नहीं हैं। संसारियों के तो मित्र हैं। काम और क्रोध संसारियों के क्या हैं? मित्र हैं। क्यों भाई? आप अपने पुत्र को क्या आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं? आपका बेटा जो है पूर्ण सांसारिक हो या वैराग्यवान हो? क्यों भाई, क्या कहते हैं आप? बोले महाराज यहां तो दबी जवान से यही बोलना पड़ेगा, वैराग्यवान हो है? लेकिन हम ऐसा चाहते, हाँ, हमारे बेटे के पास खूब धन दौलत हो, खूब उसकी नाम यश कीर्ति संसार में फैले। क्यों भाई, यही चाहते हो कि नहीं चाहते? उसको भगवान मिले या ना मिले, उसको ज्ञान हो या ना हो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यहां पर भगवान ने लगाया है आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरणा। ये ज्ञानी महापुरुष के यानी अध्यात्म के रास्ते को जिन्होंने चुना है उनके लिए बैरी है, सबके लिए बैरी नहीं है। संसारी पुरुष के लिए, संसार में रमे हुए पुरुष के लिए तो महाराज ये मित्र हैं। काम क्रोध तो उसके क्या हैं? उसको मजा आती है। क्या करने में मजा आती? हाँ, मजा आती क्रोध करने में। हाँ, हरिद्वार में एक गौशाला थी महाराज, उस गौशाला में जिसको गौओं का संरक्षण जो है दिया गया कि देखभाल की, तो गौएं जब चर करके वापस आती थी तो वो एक डंडा लेके खड़ा हो जाता था महाराज, और एक एक गाय जो अंदर जाती थी एक बड़ी जोर से उसके डंडा मारता। एक व्यक्ति बेचारा भक्त था, गऊ भक्त, उसने कहा महाराज आप ये क्या करते हो? बोले ये जो है डंडा बहुत जरूरी है, इससे ये सारी गाय मेरे किसमें रहेंगी? नियंत्रण में रहेंगी महाराज, है ना। बेचारा पशु पहले से ही सीधी लाइन में खड़ी हो जाती सारी गऊएं देख के डंडा। सांसारिकों के लिए तो महाराज काम क्रोध क्या है? शत्रु नहीं है, क्या है? मित्र है। उनको तो इसमें क्या आता है? आनंद आता है। ध्यान देना, तो जब अपनी किताब पढ़ना प्रारंभ करो जीवन में, अगर काम क्रोध आपको अपने मित्र लगे तो तुम क्या हो? क्यों भाई, राम की सेना की होगी रावण की सेना की? भाई एक सेना में शामिल हो जाओ। क्यों भाई, काम क्रोध यदि आपको मित्रवत दिखाई दे रहे हो तो क्या हो? रावण की सेना में। और अगर काम क्रोध आपको शत्रु दिखाई दे रहे हो तो तुम किसकी सेना में? तो राम की सेना में कितने आदमी रह जाएंगे? मेरे ख्याल से तो हनुमान जी के अलावा कोई वहां दिखाई देने वाला। अरे भाई, जो मजा क्रोध करने में, डांटने में आता है या डांट खाने में आता है? क्यों भाई, डांटने में, दूसरे को डांटने में मजा आता है या डांट खाने में मजा आता है? यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कहता है कि यहां मुझे डांट खाने में कोई आपत्ति नहीं है? कोई है ऐसा? एक भी नहीं मिलेगा हमारा, है ना। तो क्रोध करने में आनंद आता है, दूसरे को सताने में आनंद आता है, दूसरे को दबाने में आनंद आता है। इसलिए ये हमारा अंतःकरण अशुद्ध है। कामनाएं शांत होने का नाम नहीं ले रही। यश कीर्ति सम्मान सब हमको चाहिए, कुछ भी मेरे हाथ से निकलने ना पाए। शास्त्र कहता है इन सारी कामनाओं को आग लगा दो, बंडल बनाकर इनका। जला के राख कर दो। और जिस दिन तुम निष्काम हो जाओगे, कामना रहित हो जाओगे, तुम्हारा अपना स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ये धुआं हटा नहीं कि जलती हुई ज्वाला तुम्हारे सामने आ जाएगी। दर्पण के ऊपर से महाराज धूल हटी नहीं कि चमचमाता हुआ तुम्हारा मुखड़ा उसमें दिखाई देने लगेगा। जेर कटी नहीं कि उसके अंदर से सुंदर सा बालक प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार से जब काम और क्रोध तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे, उसी क्षण तुम्हारा स्वरूप परमात्मा स्वरूप तुम्हारे समक्ष होगा। उसके लिए तुमको किसी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं करना होगा। तो भगवान ने जो है दैवी संपदा के ये गुण गिनाए हैं महाराज। और उसके बाद पुनः 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने फिर जो है इसी चीज को दोहराया है, लेकिन समय जो है समाप्त हो चुका, इसलिए इस प्रसंग को थोड़ा सा कल फिर लेकर आगे जो है चर्चा करेंगे। बहुत बहुत भगवान ने बारंबार, क्योंकि यही दो हैं, अगर ये जिस दिन दो हमारे जीवन से चले गए उस समय तो प्रभु प्रकट ही प्रकट है महाराज, उनको फिर ढूंढने की खोजने की कोई आवश्यकता। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।